ना करना, प्रेम करना, राज करना वो सिर्फ पानी ग्रहण किया विवाहिता पत्नियां है उनका एक प्रकार प्रेम है, परंतु पृथ्वी गोपियों का प्रेम जो अति चमत्कार पूर्ण है जो कि संसार में जिसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता है। यहां तक कि उद्धव जी ने यह कहा, हे गोपियों आप लोगों का ऐसा महान प्रेम न भूतो न भविष्यति, ऐसा तो कभी संभव ही नहीं। और ऐसे महान प्रेम के सामने जहां भगवान श्री कृष्ण झुक जाते हैं, न पारय निरवत्त संयुयाम स्वसाधु कृत्य विविध आयुषापिव, जिस प्रेम के सामने स्वयं परब्रह्म जो कि वेदांत के प्रतिपाद ओम पूर्ण मदह पूर्ण मिदम पूर्ण पूर्ण मुदच्यते, पूर्ण ब्रह्म भगवान स्वयं अपूर्ण बन रहे हैं, भागवत में आकर के भक्तों के प्रेम के अधीन बनकर वे प्रेम के ऋणी मान रहे हैं कि गोपियों के प्रेम के सामने वे देवताओं की आयु पा करके भी उनके ऋण से वे कदापि मुक्त नहीं हो सकते। इस प्रकार गोपियों से वे प्रार्थना करते हैं कि आपने सर्वस्व त्याग कर दिया मेरे लिए, मेरे चरणों में सर्वस्व सोचावर कर दिया आपने, इसलिए मैं किसी भी प्रकार से आपके ऋणों से मुक्त नहीं हो सकता। अगर आप लोग अपने गुणों के द्वारा और गुणों से माधुर्य से प्रेम से सहमी प्रसन्न हो जाए हमारे प्रति उदारता प्रकट करें। इस प्रकार गोपियां कृष्ण के इन गुणों से इन बातों से झुकना ही पड़ा गोपियों को, और मानव कृष्ण ने उनके हाथ पकड़ लिया उठा लिया, रास्ते नृत्य किया, सबको आनंदित किया। इस प्रकार गोपियों को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है ऐसा सौभाग्य और किसको महाप्रभु जी बोले गुरु सर जो उत्तम, परंतु हम और भी चाहते इससे आगे बहुत कुछ सुनने को। तब श्री रामानंद जी ने कहा कि इससे आगे और सुनना है। गोपियों ने सर्वश्रेष्ठ विश्वभानंद ने इसकी राधा दी है। श्रीमद भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज ने भी स्वयं बोल दिया, कह उठा जो कि रोक भी नहीं पाए, जिनका नाम लेते ही मूर्छा षाणमासिको भवे, जिनके नाम ग्रहण करने से 6 महीने की मूर्छा हो जाती है श्री सुखदेव जी महाराज जी को, ऐसी जो विश्वभानंदनी राधा जी अंततः रोक भी नहीं सके बोल दिए अनयाद्रम भगवान हरिश्वर जन्नो बिहार्य गोविंद प्रीतो जाम अनयाद्रहत, हे अनयाद अनेक गोपियों अनयाद राधित राधा मित प्राप्त इति राधित श्रीनवेश्वरम चक्रवर्ती ठाकुर जी कि अनया राधामिति राधामिति प्राप्त इति राधित, जिन्होंने राधा जी को प्राप्त किया वे आराधित, और भगवान हरि ईश्वर सबको वंचना करने में समर्थ है। हरि है सबके चित्त मन को चुराने वाले, सर्व समर्थ है, असंभव को संभव करने वाले, स्वेच्छामय है लीलामय स्वतंत्र सराय पुरुष है, और भी गोविंद है। कैसे गोविंद जो राधा जी को प्राप्त करके स्वयं आनंदित होते हैं, या राधा जी को प्रसन्न करने के लिए उनके मान बनाने के लिए स्वयं पुष्प चयन करके राधा जी को साथ में ले जा करके यहां सिंगार वट में उन्होंने केश प्रसादन करते हुए राधा जी को बेड़ी में फूलों से सजाया और उनको सर्वोच्च स्थिति में पहुंचा दी, सर्वश्रेष्ठ नायिकाओं के रूप में विश्वभानंद ने राधा जी की महिमा को प्रकाशित कर दी। तथा विष्णु पुराण में भी कहा है यथा राधा प्रिया विष्णु तस्य पुण्यं प्रियं तथा सर्व गोपीषु सेवयिता विष्णु अत्यंत वल्लभ। भगवान विष्णु ने रास बताया, सुन करके आपको आश्चर्य लगेगा, अरे भगवान विष्णु तो चार भुजा वाले होते हैं, अंत से जाते सहन करने वाले को विष्णु कहा जाता है। अब गोपियों के साथ में रास सजाने वाले विष्णु वो कौन, जो व्यापनों की गीति विष्णु वृषभानंद लिंग राधा जी के मन प्राण हृदय सर्व शरीर में जो व्याप्त है, रोग रोग में कृष्ण नहीं क्योंकि कृष्ण उनमें विराज और उनके द्वारा प्रकाशित ब्रजधाम वृंदावन वृक्ष लताए राधा कुंड उनके सोपान समस्त कुंज वर्ण सभी कुछ राधा मय, इसलिए कृष्ण सर्वत्र ब्रजभूमि में व्यक्त है और व्यापक रूप में राधा जी के प्रेम रस का भाव रस का जो स्वयं आस्वादन किया करते हैं समस्त गोपियां जिनके भाव के ये क्षण को पाने के लिए ललचती हैं और वृषभानंद ने राधा जी के चरण कमल की आराधना करती है, उनकी दासी बन करके प्रार्थना करती है, कहीं उनके भाव के एक कण भी हमें प्राप्त हो। इस प्रकार वृषभानंद ने राधा जी का प्रेम सर्वोत्तम प्रेम है जो कि श्रीमद् भागवत में दर्शाया है। महाप्रभु जी बोले यो सर्व यो भाई सर्वोत्तम, महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए और उसके साथ वृषभानंद ने राधा जी की महिमा प्रकाशित की जो कि श्रीमद् कविराज गोस्वामी पाद ने बताया, जैसे राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान, परमेश्वर श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह वैसे राधा जी समस्त शक्तियों में परियसी सर्वश्रेष्ठ है, उनसे बढ़कर के और कोई श्रेष्ठ शक्ति नहीं। संसार में लोग अभी नवरात्रि आ रही है, सभी लोग देवी दुर्गा की पूजा करते हैं दुर्गा मैया, परंतु दुर्गा मैया कौन सी शक्ति है, भगवान श्री कृष्ण की तीन शक्तियों में ये बहिरंगा शक्ति जिन्हें माया शक्ति कही जाती है, शिव जी की धरणी है उनकी पत्नी, तो शिव जी के साथ में शिव शक्ति युक्त शस्त्र त्रिलिंग समृत देवी दुर्गा जी के साथ में सदा सर्वदा निवास करते शिव। और भगवान श्री कृष्ण किसके साथ में, वृषभानंद ने श्री राधा जी के साथ में, उनकी प्रेयसियों में सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उन्हें अंतरंगा सर्वशक्ति लाडली कही गई है। कृष्ण को अल्लाह देता है नाम लाडली, कृष्ण को आनंदित करती है इसलिए उनका नाम लाडली, और कृष्ण भी उन्हीं लाडली के द्वारा समस्त भक्तों के प्रेम को वर्धन करते हैं, समस्त जीवों को आनंदित किया करते हैं और भक्तों का पोषण करते हैं प्रेम के द्वारा, इसलिए उनका नाम लाडली है। अतः देवी दुर्गा जी को और राधा जी को कभी एक बराबर ज्ञान नहीं करें, सब कुछ मिलाकर के एक खिचड़ी का बना दें, देवी दुर्गा जी हुए दुर्गा जी जो है ये जगत की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए ये ब्रह्मांड पिंड देवी था, और राधा जी जो है कहां प्रस्थान करती है, वृंदावन में ब्रजधाम में गुरु धाम में जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ शक्ति कही गई है, उन्हीं के बहिरंगा शक्ति शक्ति या छाया रूपा शक्ति राधा जी है, ये दुर्गा जी है, जहां पर आप परमा शक्ति वहां विष्णु स्वरूपी, वहां विष्णु स्वरूपी कौन है? विश्वभरानंद जी राधा जी परमा शक्ति। अस्या अवरिता शक्ति वहां माया अखिलेश्वरी, राधा जी का एक प्रकार जो छाया शक्ति या आवरिका शक्ति कही जाती है, जिसको महामाया अखिलेश्वरी विश्वोदरी दुर्गा जी। जया सर्वम जगत मुक्तम, जिस माया के द्वारा समस्त जगत मुक्त होता है, वे भगवान के सामने कभी नहीं जाती। भगवान के सामने कौन सी शक्ति है? राधा जी है, गोपियां हैं, जो कि उनके साथ में नित्य लीला करते, नित्य लीला विलास करते, इसलिए सबको कभी एक नहीं पाते। राधा जी की आराधना करने से, उनका आश्रय करने से कृष्ण की प्राप्ति होती है। बिना राधा जी के कृष्ण केवल पर ब्रह्म, केवल निर्विशेष ब्रह्म बन जाएंगे, रचक हम ब्रह्म नहीं बन पाएंगे यदि राधा जी नहीं। इसलिए समस्त शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ शक्ति, और भी कहा है वाराणस्याम विशाल लक्ष्मी विमला पुरुषोत्तमे रुक्मिणी तुलसीदास्याम राधा वृंदावने बने। वाराणसी में विशाल लक्ष्मी है, विमला देवी जगन्नाथ क्षेत्र पुरी धाम में विमला देवी है, और द्वारावती द्वारकापुरी में रुक्मिणी देवी है। वृंदावन वन में कौन से कौन है? राधा वृंदावने बने, वृंदावने स्तरी वृषभन नंदिनी श्री राधा जी। इसलिए गोविंद नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व कृष्ण कांता शिरोमणि। राधा जी जो है गोविंद को आनंदित करने वाली गोविंद नंदिनी, भुवन मोहन श्याम सुंदर की मनोमोहिनी राधा जी है, इसलिए गोविंद मोहिनी का गोविंद के प्राण सर्वस्व हृदय सर्वस्व वृषभर नंदिनी श्री राधा। ऋग्वेद में राधया माधव देव माधवे नैव श्री राधिका, राधा जी के साथ माधव और माधव के साथ में श्री राधा जी है, और कोई दूसरी शक्ति नहीं है। जितनी भी शक्तियां हैं सब राधा जी के ही प्रकाश है। समस्त गोपियां जो कि सखी और मंजरियां हैं, ये सभी राधा जी के कोई अंश कोई कला के रूप में प्रकाशित हैं, और द्वारका की जितनी भी रानियां हैं वे सब राधा जी के ही प्रकाश हैं। ऐसी जितनी शक्तियां हैं, जितनी लक्ष्मियां हैं, जितनी देवियां हैं, सब राधा जी से ही प्रकाशित हुई है। इसलिए वे क्या करती हैं? उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी राधिका पद रज पूजये माने उमा देवी सप्तभामा चंद्रावली रुक्मिणी वे सब के सब राधा जी के चरण धूलि की प्रार्थना करती रहती है, और राधा जी के गुणों का वर्णन करती है, उनके पातिव्रत गुण सौभाग्य गुण इस तरह से सभी प्रार्थना करते रहते हैं। जो कि वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी सर्वश्रेष्ठ शक्ति, और लास्ट में समस्त गोपियों को छोड़ करके कृष्ण राधा जी के साथ में चले गए, उनका मार्ग साधन किया, जो कि श्रीमद् भागवत में श्रीमद् कृष्ण दैत्यायन वेद व्यास जी ने लिखी। तो चैतन्य महाप्रभु जी बोले हाँ ये बात तो है, परंतु इससे आगे देना और एक प्रश्न है। चूड़ी को एक राधा के निगल को भी गले गले गो गोपियों के घर से चोरी छिपे राधा जी के साथ में गए, आपने सामने यदि छोड़ करके जाए तब तो राधा जी की महिमा प्रकाशित हो। उस समय श्री रायमंद जी ने हंसते हुए कहा कि हम इंद्रविंद में कभी जाए। गोस्वामी जी ने कहा है संसारी रापी संसार वासना भक्त श्रृंखला राधा आधार हृदय तत्याय मुझे सुंदरी। संसारी भगवान श्री कृष्ण ने बासंती रास में जहाँ समस्त गोपियां अवस्थित हैं और राधा जी समस्त गोपियों के साथ होने के कारण सोचने लगी बात सब समान सब बराबर सब एक समान। उस समय राधा जी मान करके रुट करके जा रही हूँ तो आमने सामने समस्त प्रज गोपियों को छोड़कर कृष्ण राधा जी के साथ में चले गए और राधा जी जब कुंज में छिप गई उन्हें ढूंढते हुए कहीं कहीं मिला तब वे धीर समीर में बैठ करके धीर समीर जमुना बसते बने बनवा नितम गमन विलंबन मनुष्यतम हृदय सम। ऐसे धीर समीर में वृंदावन के वंशी भट्ट के समीप धीर समीर जहाँ मलय पवन दक्षिण से चलते हुए हिम शैल में स्नान करने को जा रहे हैं परंतु कृष्ण की मोहन वंशी की ध्वनि से वो मलय पवन अब यमुना के शीतल बारी के स्पर्श करते हुए वृंदावन में आकर के मंद मंद गति से चलने लगे इसलिए नाम पड़ गया धीर समीर। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जहाँ रसविलासी रसिक शेखर उस धीर समीर में बैठे बैठे राधा राधा नाम जप कर रहे थे और राधा जी के विरह में बैकुल होकर आंसू बहा रहे हैं। राधा जी की कोई सहेली सखी दूर से देख रही है और ऐसे समय में कृष्ण राधा जी के लिए बैकुल होते हुए जो कि सर मूर्छित हो गए। उस समय सखी दौड़ करके गई कि हे नितम्बिनी राधे मातुल गमन विलंबन अब जाने में विलंब पत्र हो इस समय कृष्ण तुम्हारे लिए बैकुल है तुम्हारा नाम जप रहे हैं। इतना कह करके राधा जी को सजा करके ले आई। जैसे राधा जी उपस्थित हुई कृष्ण चंद्र मूर्छित होकर के पड़े हुए हैं राधा जी के लिए बैकुल होते हुए मूर्छा दशा में। उस समय जो कि राधा जी वहां उपस्थित हुई कृष्ण के मस्तक पर अपना करकमल अर्पण करने लगी जाने हाथ फेरने लगी। जयति संती वनी निकुंज देवी इस प्रकार निकुंज वन की देवी वृषभ नंदिनी श्री राधा जी जिनके लिए संजीवनी औषधि है कृष्ण जहाँ राधा जी के कारण मूर्छित हो जाए उनकी मूर्छा को छुड़ाने वाले कोई भी शक्ति नहीं किसी का ताकत नहीं। जब राधा जी के करकमल का स्पर्श हुआ तो उस समय शीतल स्पर्श पार करके कृष्ण की मूर्छा खुली। धीरे धीरे नेत्र खोल करके जब ही देखा राधा सामने बैठी है उस समय उन्हें देख करके अश्रुधारा प्रवाहित होने लगा कृष्ण स्वयं रोने लगे। उस समय राधा जी भी रो रही जिस प्रकार बड़े मार्मिक रूप से राधा कृष्ण का मिलन होता है ऐसे जो रसमय मिला जहाँ पर निकुंज वन की देवी श्री राधा जी है। राधा उपनिषद में वर्णन होता है कृष्ण राधा इति राधा कृष्ण जिनकी आराधना किया करते हैं जिनके चरणों में पुष्पांजलि समर्पण करते हुए जय श्री राधे कह करके अपना सिर झुकाते हैं प्रणाम करते हैं ऐसे रसमय कृष्ण चंद्र रसमयी वृषभ नंद ने श्री राधा जी के साथ में लीला विनोद किया करते ऐसे శ్రీయుడు సమాయ ప్రేమమాయ బృందావనం రసి శంకర శ్రీకృష్ణనే రస కా ఆస్వాదన కియా ఐసి ప్రజ భూమి ప్రేమ కీ భూమి అనువ లీలా భూమి జహాన్ పర్ కృష్ణచంద్ర జో కీ రాధా జీ కే చరణో మే పుష్పాంజలి సమర్పణ కర్తే హై ఔర్ రాధా జీ క్యా కర్తీ హై జో కీ దేవీ కృష్ణమయీ ప్రోక్తా రాధికా పరదేవతా సర్వలక్ష్మీమయీ సర్వకాంతి సర్వమోహిని పరా దేవీ దోత్మనా పరమా సుందరి కృష్ణ కీలా కీ వసతి నగరీ जिनके सौंदर्य का वर्णन या अंदाजा अनुमान कैसे लगा पाएंगे। हमारे आचार्य लोग स्वामी बलराम उन्होंने वर्णन किया लक्ष्मी जलंत्री कमलस्त रखान जलस्त बिंदु मिलाधि विषे बोले जगत वरिंदा लक्ष्मी जी सबसे बड़ी सुंदरी उनसे पढ़कर और कोई सुंदरी नहीं परंतु ऐसी लक्ष्मी जी जिन राधा जी के चरण कमल के नखों के अग्र भाग में सौंदर्य की जो छटा कण उस सौंदर्य छटा कण के एक कण भी लक्ष्मी जी प्राप्त नहीं कर पाई तो कृष्ण हनुमंदिनी राधा जी कैसे सुंदरी होंगी। कृष्ण स्वयं जिन्हें देखकर मोहित हो जाया करते हैं स्तंभित हो जाते हैं अपना सुख खो बैठते हैं ऐसे जहां लीलाएं कृष्ण के जितने सारे लीलाएं हैं सब राधा जी के कारण उनकी जितनी भी इच्छा अभिलाषा है सब निजी राधा जी पूर्ति करती हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ आराधिका इसलिए पुराणों में उनको राधिका कही है। कृष्णमयी कृष्ण जी के बाहर भीतर निरंतर कृष्ण में जो खोई हुई है और सप्त समुद्रवती राधा और अपार अनंत गुणवती राधा जो गंधर्वादित माधवा जिनके अंग गंध से माधव से उन्मादित हो जाए ऐसी समस्त देवियों में समस्त देवताओं में जो सर्वश्रेष्ठ सर्वलक्ष्मीमयी सर्व कांति समस्त सौंदर्य की पराकाष्ठा और रस साम्राज्य की नगरी है। इसलिए ऐसी जो कृष्ण नंदिनी राधा जी जो अपनी रसमयी लीलाओं के द्वारा कृष्ण को रसास्वादन कराते हैं ऐसे जो श्यामा श्याम प्रेम की मूर्ति में एकात्मक स्वरूप में बन करके गौरांग से हरे हुए हैं प्रेम स्नेह महाप्रणय राग अनुराग भाव भक्ति जहाँ पराकाष्ठा है ऐसे रस का स्वादन करने वाले रसी शेखर श्री कृष्ण जो कि स्वयं राधा भाव कांति में गौर हरि के रूप में अवतरित होकर के इस प्रेम का स्वादन किया विश्व जगत को जगाया बताया कोई सौभाग्यवान जीव हो और कोई सौभाग्यवान साधक हो यदि आश्रय करना हो राधा जी के चरण कमल का आश्रय करें जीवन में साधना का लक्ष्य बिंदु उनके भाव के एक और सीधा पुटा भी मिल जाए उनकी जो दर्शिया है प्रिय संचरिया जो उनकी किंकरिया है और जो उनकी सेवा करती है उनके अनुगत हो करके उनके भाव का एक कण भी प्राप्त हो जाए जीवन की सर्वश्रेष्ठ अभिलाषा का विषय। इसलिए यह लोग लालसा लेकर के गौरांग चरणे कुलतारुरागम श्री गौरांग सुंदर के चरण में अनुराग विस्तार करें। इसलिए आचार्यों ने कहा संसार सिंधु जलधर संसार सिंधु तरणे हृदयां यदि स्यात् संकीर्तनामृतरस रमते मनस्य प्रेमां बुधं विहरणे यदि तीर्थवृत्ति गौरांग चंद्र चरणे कुलदानुरागम। संसार सिंधु तर है, संसार समुद्र से यदि पार होने की इच्छा है और हरिनाम संकीर्तन रस में डूबने की यदि इच्छा अभिलाषा है, कृष्ण प्रेम रस सिंधु में यदि अवगाहन करने का मन है तो एकमात्र गौरांग चंद्र चरणे अनुरागम श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में अनुराग वर्धित हो, उनके चरणों में अनुनति हो, प्रार्थना हो, तब ये भाव प्री संभव, तब ब्रजरस लाभ होगा। इसलिए अंत में ऐसे ब्रजरस रसिकाया पाद पद में कुलदानुरागम आज हम सबके मत में विराजमान मंच पर आसिक ब्रजरस रसी जो कि इस प्रकार भावों में जो डूबे हुए ऐसे महान पुरुष के आज सान्निध्य प्राप्त हुए हैं, उनके मुखारविंद से अमृतमय वाणी का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह जन्म जन्मांतर का असीम अनंत सौभाग्य का फल स्वरूप ऐसे महान पुरुष की कृपा
मान माधव महाराज जी आज कुछ हरिकथा परिवेशन करेंगे। शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्ण तद्भक्ताय नमो तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्नय माम शरण। सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि बार दंडवती प्रणति पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। तत्पश्चात जो दंडीपादगण ब्रह्मचारीगण उपस्थित सज्जन महोदय मातृवृंद आज लगभग पांच दिन से यहां जम्बू में हरि कथा हो रही है। आप लोग बड़ी श्रद्धा के साथ में श्रवण कर रहे हैं। इस कथा के अतिरिक्त भी सवेरे नगर संकीर्तन होता है, इसी के घर में प्रवचन होता है, दोपहर को प्रवचन होता है, अभी रात में यहाँ पर समाप्त होने के बाद में किसी के घर में प्रवचन होगा। दिन भर हरि कथा में यहाँ पर बीत रहा है। आप लोगों का परम सौभाग्य है जो वृंदावन से सब लोग यहाँ पर पधारे हैं और हरि कथा परवेशन कर रहे हैं। कल मैं उद्धव जी के संबंध में बतला रहा था, प्रेमातु भक्त के संबंध में, जहां कृष्ण को स्वयं ज्ञानी की जरूरत है, उद्धव जी प्रतिनिधि के रूप में उद्धव जी को भेजते थे। इसीलिए ब्रज में गोपियों को, नंद बाबा यशोदा मैया को, ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए कृष्ण को जाने की जरूरत थी। और कृष्ण प्रतिज्ञा कर किए भी थे कि मैं कल परसों आऊंगा। इसलिए गोपियां, ब्रजवासी लोग जीवन धारण कर रहे हैं, उनकी बातों पर विश्वास है, कल परसों जरूर आएंगे। तो कृष्ण ने उद्धव जी को प्रेम की पाठशाला में भेजा। उद्धव वहां से प्रेम पढ़ करके आएगा तो उस समय दो हृदय की बातें कर सकूंगा। अपने कंस के सोने के रथ में बैठा करके भेजा। जब वहां गए, गोपियों ने उनसे प्रश्न किया, उद्धव ये तो बतलाओ कि प्रेम दो प्रकार का होता है, एक निष्कपट प्रेम होता है, निस्वार्थ, और दूसरा स्वार्थ भरा प्रेम होता है। जैसे पहले स्वार्थ जिस प्रेम में है उसको वर्णन कर रही हैं, जैसे जंगल में हिरण रहता है, पशु पक्षी रहते हैं, जब जंगल में आग लग जाती है तो पशु पक्षी उसे छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं, उस जगह में नहीं रहते। भिखारी भिक्षा मांगने के लिए जाता है, राधे राधे इत्यादि बोलता है, जब उसको भिक्षा मिल जाती है तो बुलाने पर भी वो नहीं ठहरेगा, दूसरी जगह चला जाएगा। जैसे विद्यार्थी है, स्कूल कॉलेज में पढ़ता है, पास हो गया, फिर अब मास्टरों से गुरुओं से कोई संबंध नहीं। और जैसे वेश्या है, उसे रुपये की जरूरत है, किसी से उसको मोह लाग लगाव नहीं है, यदि रुपया उसका समाप्त हो गया फिर उसे प्यार नहीं करेगा। इसी तरह से ये जगत जो है ये स्वार्थ का प्रेम है। कृष्ण के साथ में हमारा स्वार्थ प्रेम तो था नहीं, हमने कभी किसी स्वार्थ के लिए उनसे प्रेम नहीं किया, और कृष्ण ने भी हमसे कभी भी स्वार्थ से कोई प्रेम नहीं किया। उद्धव बतला सकते हो ये प्रेम कैसे टूट गया, कैसे टूट गया, कैसे द्वारका में बस गए और 16,000 रानियों के साथ में, 108 रानियों के साथ में शादी कर ली, हमें भूल गए, बतला सकता है? उद्धव सिर खुजलाने लगे, उत्तर नहीं आया। इसलिए कॉलेज में, प्रेम के कॉलेज में भर्ती नहीं हो सके, केवल ऊपर से देखा, कॉलेज को देखा प्रेम का, उसके प्रिंसिपल को भी देखा, राधा जी को, ललिता विशाखा जी को भी देखा, किंतु ब्रज का कोई भाव उनको नहीं हुआ, इसलिए अंत में लौट करके आना पड़ा। ब्रज के एक धूली कना भी एक कीर्ण लता गुल में भी नहीं हो सके, इसलिए कॉलेज में तो भर्ती नहीं हुए, किंतु ऊपर से जो देखा द्रवित हो गए और गोपियों से प्रतिज्ञा की कि मैं जब जाऊंगा मथुरा में कृष्ण को जरूर लेकर के आऊंगा। इसके बाद में कॉलेज में भर्ती तो प्रेम कॉलेज में हुई नहीं। शाम को सोने के रथ पर चढ़कर उद्धव जी आए ब्रिज में। उद्धव जी सोच रहे थे कृष्ण को छोड़कर मैं कैसे एक मिनट भी रह सकता हूं, संभव नहीं है। कृष्ण ने बतलाया जो उद्धव ब्रिज में मैं एक टुकड़ा रहता हूं, संपूर्ण रूप में ब्रिज में रहता हूं, ब्रिज में जाने पर तुम देखेगा। तो जब उद्धव जी ब्रिज में पहुंचे तो उस समय देखा क्या, करोड़ों करोड़ों गये गौएं चर करके लौट रही हैं, सखा लोग कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, सांड लोग परस्पर लड़ रहे हैं और ब्रिज की गोपियां शाम को घृत की दीपक देकर जलाकर कोई दधि मंथन कर रही है, कोई कुछ कर रही है। दधि मंथन कैसे कर रही है, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति। कोई गोपी अपने बच्चे को थपथपा करके सुला रही है तो सो सो नहीं कर रही, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो कोई पिंजड़े में सुख है, उसको पालन कर रखा है सुख को, तो वो क्या उनको पढ़ा रहे हैं, बोलो बोलो, गोविंद रामो धर्माधवेति, गोविंद रामो धर्माधवेति। आप लोग भी घर का काम करते हुए क्यों नहीं ऐसा कर सकते, घर में पोत रही हैं, साफ कर रही हैं, रसोई बना रही हैं और उस समय कह सकती हैं गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति। जसोदा जी मानो अपने बच्चे की बाल गोपाल की लीलाओं का स्मरण करके और दधि मंथन करते हुए आंखों से आंसुओं की धारा गिर रही है, गोविंद रामो धर्माधवेति, गोविंद रामो धर्माधवेति। इस तरह से उद्धव जी धर्माधवेति, गोविंद रामो धर्माधवेति। उद्धव जी ने देखा सचमुच में कृष्ण ने कहा था मथुरा में मैं तो केवल टुकड़ी के रूप में थोड़े और परिपूर्ण रूप से मैं ब्रिज में रहता, वृंदावनम परित्यज्य पादे एक अनुपज, वृंदावन को छोड़कर के कृष्ण कहीं नहीं रह सकते, चाहे छिप करके रहे चाहे प्रकट रूप में रहे। अभी भी कृष्ण की लीलाएं वहां पर चलती हैं, सौभाग्यवान व्यक्ति लोग उसका दर्शन करते हैं। इसलिए वृंदावन को छोड़। राधा जी भी वृंदावन को छोड़ करके नहीं जाती, उनको कृष्ण का योग नहीं होता, वो वृंदावनेश्वरी विशुभानंदनी राधिका जी हैं। और जिनको वियोग होता है नंदगांव में, जो भ्रमर गीत को कहती हैं, कभी मान कर रही हैं, कभी क्रोध कर रही हैं, कभी बड़ी नम्र होकर के कहती हैं, वो कौन है?
प्रकाश है,
वियोगिनी
राधा जी का प्रकाश, वियोगिनी राधा,
वो वियोगिनी राधा जी हैं। और वृंदावन को छोड़कर के नहीं जाती हैं, किंतु जो कुरुक्षेत्र में कृष्ण से मिलने के लिए गई वो कौन है? वो संजोगिनी राधा जी है, संजोगिनी राधा जी। उसी प्रकार से महाप्रभु जी के लीला में भी सब समय जो गुप्त वृंदावन नवदीप धाम में रहते हैं, वो विशुभानंदनी के विभाव से विभावित चैतन्य महाप्रभु। और जो जगन्नाथपुरी में रहते हैं वो वियोगिनी है, और जो राय रामानंद के साथ में गए हैं गोदावरी के तट पर, वो राधा भाव से विभावित संजोगिनी राधा जी है। बहुत गंभीर विषय है, जो निरंतर इन कथाओं को सुनेंगे वे सब समझ सकते हैं। तो उद्धव जी ने देखा कृष्ण तो यहीं पर है, तत्पश्चात शाम हो गई थी, रथ को खड़ा कर दिया और नंद बाबा के घर में खबर दिया। नंद महल में उद्धव जी का भाई और सखा कृष्ण का आया हुआ है। सुख नंद बाबा जी घर से निकल करके इनको घर में ले गए, बड़ा आदर किया, कुछ खिलाना था, किंतु रसोई तो बनती नहीं, कृष्ण तो है नहीं, बर्तन जो है बिना माजे हुए औंधे पड़े हैं, और रसोई के लिए यह चूल्हा है, आजकल तो चूल्हे नहीं होते हैं, पहले चूल्हे होते थे, चूल्हे पर मकड़ों ने जाला बन दिया है, इसलिए रसोई नहीं बनी, सभी विरह में तप्त हैं, कौन बनाए किसके लिए। यशोदा जी उठ करके बैठ नहीं सकती, सब समय रोते रोते आंखें अंधी हो गई हैं। उस समय नंद बाबा ने किसी को भेज करके ब्राह्मण के घर से खीर मंगाया, वो भी खीर बिना
चीनी का
खीर खिलाया। इसके बाद आदर जत्न करके जब प्रसन्न हो गए तो पूछना चाहते हैं जे हमारा कृष्ण कैसे है, कुशल से है? जो ही बोलना चाहते हैं गला भर जाता है, पूछ नहीं सकते। बड़ी मुश्किल से पूछा, हमारा भैया वासुदेव ठीक है, भगवान की कृपा से अपने पापों से वो मारा गया, कंस मारा गया, अब तो कुशल है। जब ही कृष्ण बोलना चाहते हैं त्यों ही गला भर जाता है, अंत में किसी प्रकार से बोल। ओहो देखो उद्धव, मैं कृष्ण को भूलने के लिए मैं यमुना के किनारे जाता हूं, वहां पर सब लीलाएं की और कृष्ण का स्मरण हो आता है, गोवर्धन जाता हूं पर्वत पर, किंतु ऐसा कोई स्थान है जहां पर लीला नहीं किया। ऐसे उनकी लीलाओं का वर्णन करते 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 एकदम रोने लग गए। उद्धव जी कहते हैं कि इसको क्या संतना दूं, कृष्ण ने कहा है जे संतना देना, यदि कहूं ये नंद बाबा और रोइए तो ये संतना होगी नहीं। कृष्ण के लिए यदि एक आंख में एक बूंद भी पानी आ जाए, जीवन सार्थक है मनुष्य का, किसी प्रकार से कृष्ण का वियोग हृदय में आए, एक बूंद भी आंसू आंखों में आ जाए, समझो जो उस मनुष्य का जीवन बड़ा भारी सौभाग्यवान है। और ये तो फूट फूट करके रो रहे हैं, उनको अपना बेटा मान करके रो रहे हैं, तो क्या कहूं यनंद बड़े सौभाग्यवान हो, ये तो सांत्वना होगी नहीं। और यदि कहूं मत रोइए, तो शास्त्र कहते हैं मना करते हैं, ऐसा मत कहो। और यदि कहूं जो रो, तो इतना सांत्वना देना हुआ नहीं। आखिर मैं क्या कहूं, जब कुछ समझ में नहीं आया तो इतना ही बोले, नंद बाबा और जसोदा मैया आप लोग परम सौभाग्यवान हैं, जो पर ब्रह्म समस्त रच विश्व की सृष्टि करने वालों के वहां भी सृष्टिकारी है, जो आदि अनादि है स्वयं, उसको पुत्र मान करके रो रहे हैं, आप परम सौभाग्यवान हैं। नंद बाबा चुप हो गए और बोले, उद्धव मैंने सोचा था कि तुम अब बुद्धिमान हो गए हो, कृष्ण के साथ में अनेक दिन तक रहे हो, उसके सखा भी हो, किंतु तुम्हारे अपल का दांत कभी भी नहीं गया गिरा, दूध का कोई दांत होता है अभी तक नहीं गिरा, अर्थात अकल तुमको नहीं आई। उद्धव जैसे लोग को नंद बाबा कह रहे हैं जो तुमको अकल नहीं है, किसको सौभाग्यवान कहना चाहिए किसको सौभाग्यवान नहीं कहना चाहिए ये भी तुम नहीं जानते। तुम कह रहे हो कृष्ण आपका बेटा है, ऐसे बेटा को कृष्ण जो स्वयं भगवान है उसको बेटा के रूप में हमने पाया और खो दिया और अभी तक जीवित मैं हूं, उसको तुम सौभाग्यवान कहते हो। उद्धव जी ने कहा जी मैंने ठीक नहीं कहा, ये ठीक नहीं किया। नंद बाबा बोले जी देखो जगत में एक ही बाप था और वो था दशरथ महाराज, पुत्र के वियोग में हाराम हाराम और हाराम कहते हुए प्राण छोड़ मेरा पद्य जैसा हृदय प्राण नहीं निकल रहा, सुन राम जी कृष्ण मेरा बेटा है, मैं तो उसका बेटा कभी नहीं माना, बेटा ही माना, भगवान नहीं माना उसे, उसको डांटा डपटा सब कुछ किया, उसको शासन किया, कभी अपनी जूती उसे कहता थे जूती लाना सिर पर लेकर के आता, और कहते 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 मूर्छित हो गए। जसोदा मैया तो कुछ बोली ही नहीं सके, सवेरा हो गया, उद्धव जी स्नान इत्यादि करने के लिए कृष्ण कुंड नंदगांव में है, वहां पर गए स्नान किया, हठात देखा क्या, देखा जी वहां पर कोटि कोटि कदंब के वृक्ष हैं। जब से कृष्ण बाहर में गए हैं मथुरा, तब से उन्होंने न कुछ खाया न कुछ किया, न कपड़े बदले न कुछ, उसी वन में हैं, हीरा में तप्त है। उद्धव जी ने उधर में देखा, देखने के बाद में क्या हुआ, अभी एक कीर्तन हो इसके बाद मन रो लागे।
तो सिद्धि के साथ में शिव सत्य युक्त समृत देवी दुर्गा के साथ में सदा सर्वदा निवास करते सिद्ध। और भगवान श्री कृष्ण किसके साथ में, विष्णुहर चंद्र से राधा जी के साथ में, उनकी प्रेयसियों में सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उन्हें अंतरंगा सर्वशक्ति लादनी कही गई है। कृष्ण को अल्लाह देखाते नाम लादनी कृष्ण को आनंदित करती है, इसलिए उनका नाम लादनी है। और कृष्ण भी उन्हें लादनी के द्वारा समस्त भक्तों के प्रेम को वर्धन करते हैं, समस्त जीवों को आनंदित किया करते हैं और भक्तों का पोषण करते हैं प्रेम के द्वारा। इसलिए उनका नाम राधनी है। अतः देवी दुर्गा जी को और राधा जी को कभी एक बराबर ज्ञान नहीं करें, सब कुछ मिला करके एक खिचड़ी का बनाते हैं। देवी दुर्गा जी हो, दुर्गा जी जो है ये जगत की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए ये ब्रह्मांड पिंड देवी धाम। और राधा जी जो है कहां स्थान करती है, वृंदावन में, ब्रज धाम में, गुरु धाम में, जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ शक्ति कही गई है। उन्हीं के बहिरंगा शक्ति या छाया रूपा शक्ति राधा जी है, ये दुर्गा जी है। जहां पर परमा शक्ति वहां विष्णु स्वरूपिणी, वह महाविष्णु स्वरूपिणी कौन है, वृषभानंदिनी राधा जी परमा शक्ति। अस्या आवरिका शक्ति महामाया अखिलेश्वरी, राधा जी का एक प्रकार जो छाया शक्ति या आवरिका शक्ति कही जाती है, जिसको महामाया अखिलेश्वरी विश्वोदरी दुर्गा जी। जया सर्वम जगत मुक्तम, जिस माया के द्वारा समस्त जगत मुक्त होता है, वे भगवान के सामने कभी नहीं जाती। भगवान के सामने कौन सी शक्ति है, राधा जी है, गोपियां हैं, जो कि उनके साथ में नित्य लीला करते, नित्य लीला विलास करते, इसलिए सबको कभी एक नहीं पाए। राधा जी की आराधना करने से, उनका आश्रय करने से कृष्ण की प्राप्ति होती है। बिना राधा जी के कृष्ण केवल पर ब्रह्म, केवल निर्विशेष ब्रह्म बन जाएंगे, रसघन ब्रह्म नहीं बन पाएंगे यदि राधा जी नहीं हो। इसलिए समस्त शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ शक्ति, और भी कहा है वाराणस्याम विशाल लक्ष्मी विमला पुरुषोत्तमे रुक्मिणी तुलदारावत्या राधा वृंदावने बने। वाराणसी में विशाल लक्ष्मी है, विमला देवी जगन्नाथ क्षेत्र पुरी धाम में विमला देवी है, और द्वारावती द्वारकापुरी में रुक्मिणी देवी है। वृंदावन वन में कौन से कौन है, राधा वृंदावने बने वृंदावनेश्वरी वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी। इसलिए गोविंद नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व कृष्ण कांता शिरोमणि। राधा जी जो है गोविंद को आनंदित करने वाली गोविंद नंदिनी, भुवन मोहन श्याम सुंदर की मनोमोहिनी राधा जी है, इसलिए गोविंद मोहिनी का गोविंद के प्राण सर्वस्व हृदय सर्वस्व वृषभानु नंदिनी श्री राधा। ऋग्वेद में राधया माधव देव माधवे नैव श्री राधिका, राधा जी के साथ माधव और माधव के साथ में श्री राधा जी है, और कोई दूसरी शक्ति नहीं है। जितनी भी शक्तियां हैं सब राधा जी के ही प्रकाश है। समस्त गोपियां जो कि सखी और मंजरियां हैं, ये सभी राधा जी के कोई अंश कोई कला के रूप में प्रकाशित हैं, और द्वारका की जितनी भी रानियां हैं वे सब राधा जी के ही प्रकाश हैं। ऐसी जितनी शक्तियां हैं, जितनी लक्ष्मियां हैं, जितनी देवियां हैं, सब राधा जी से ही प्रकाशित हुई है। इसलिए वे क्या करती है, उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी राधिका पद रज पूजये माने उमा देवी सप्तभामा चंद्रावली रुक्मिणी वे सब के सब राधा जी के चरण धूलि की प्रार्थना करती रहती है और राधा जी के गुणों का वर्णन करती है, उनके पातिव्रत गुण सौभाग्य गुण इस तरह से सभी प्रार्थना करते रहते हैं। जो कि वृषभानु नंदनी श्री राधा जी सर्वश्रेष्ठ शक्ति और लास्ट में समस्त गोपियों को छोड़ करके कृष्ण राधा जी के साथ में चले गए, उनका मार्ग प्रसाद हल किया, जो कि श्रीमद् भागवत में श्रीमद् कृष्ण दैवपायन वेद व्यास जी ने लिखे। तो चैतन्य महाप्रभु जी बोले हाँ ये बात तो है, परंतु इससे आगे मेरा और एक प्रश्न है। चूड़ी को एक राधा के नीलम गोपी गले डरे, गोपियों के डर से चोरी छिपे राधा जी के साथ में गए, आपने सामने यदि छोड़ करके जाए तब तो राधा जी की महिमा प्रकाशित हो। उस समय श्री रायानंद जी ने हंसते हुए कहा कि हाँ नकिल गोविंद में कभी जयदेव गोस्वामी जी ने कहा है संसारी रापी संसार वासना भक्त श्रृंखला राधा आधार हृदय तत्याय मुझे सुंदरी। संसारी भगवान श्री कृष्ण ने बासंती रास में जहाँ समस्त गोपियां अवस्थित हैं और राधा जी समस्त गोपियों के साथ होने के कारण सोचने लगी बात सब समान सब बराबर सब एक समान, उस समय राधा जी मान करके रुट करके जा रही है, तो आमने सामने समस्त ब्रज गोपियों को छोड़कर कृष्ण राधा जी के साथ में चले गए और राधा जी जब कुंज में छिप गई उन्हें ढूंढते हुए कहीं नहीं मिला, तब वे धीर समीर में बैठ करके धीर समीर जमुना तीर बसते बने बनवान न तुरु नितम गमन विलंबन मनुषरतम हृदय सम। ऐसे धीर समीर में वृंदावन के वंशी भट्ट के समीर धीर समीर जहाँ मलय पवन दक्षिण से चलते हुए हिम शैल में स्नान करने को जा रहे हैं, परंतु कृष्ण की मोहन वंश की ध्वनि से वह मलय पवन अब यमुना के शीतल पानी के स्पर्श करते हुए वृंदावन में आ करके मंद मंद गति से चलने लगे, इसलिए नाम पड़ गया धीर समीर। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जहां रसविलासी रसिक शेखर उस धीर समीर में बैठे बैठे राधा राधा नाम जप कर रहे हैं और राधा जी के विरह में व्याकुल होकर आंसू बहा रहे हैं। राधा जी की कोई सहेली सखी दूर से देख रही है और ऐसे समय में कृष्ण राधा जी के लिए व्याकुल होते हुए जो कि स्वयं मूर्छित हो गए, उस समय सखी दौड़ करके गई कि हे दिगंबरी राधे मातुल गमन विलंबन अब जाने में विलंब मत करो, इस समय कृष्ण तुम्हारे लिए व्याकुल है तुम्हारा नाम जप रहे हैं। इतना कह करके राधा जी को सजा करके ले आए, जैसे राधा जी वहां उपस्थित हुई कृष्ण चंद्र मूर्छित होकर के पड़े हुए हैं राधा जी के लिए व्याकुल होते हुए मूर्छा दशा में, उस समय जो कि राधा जी वहां उपस्थित हुई कृष्ण के मस्तक पर अपना करकमल अर्पण करने लगी जाने कृष्ण जहाँ राधा जी के कारण मूर्छित हो जाए उनकी मूर्छा को छुड़ाने वाले कोई भी शक्ति नहीं किसी का ताकत नहीं। जब राधा जी के करकमल का स्पर्श हुआ तो उस समय शीतल स्पर्श पा करके कृष्ण की मूर्छा खुली धीरे धीरे नेत्र खोल करके जो ही देखा था सामने बैठी है, उस समय उन्हें देख करके अश्रुधारा प्रवाहित होने लगा, कृष्ण स्वयं रोने लगे। उस समय राधा जी भी रो रही, इस प्रकार बड़े मार्मिक रूप से राधा कृष्ण का मिलन होता है। ऐसे जो रसमय मिला जहां पर निकुंज वन की देवी श्री राधा जी है, राधा उपनिषद में वर्णन होता है कृष्ण राधा इति राधा, कृष्ण जिनकी आराधना किया करते हैं, जिनके चरणों में पुष्पांजलि समर्पण करते हुए जय श्री राधे कह करके अपना सिर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसे रसमय कृष्ण चंद्र रसमयी वृषभ नंद ने श्री राधा जी के साथ में लीला विनोद किया करते हैं। ऐसे जो रसमय प्रेममय वृंदावन रसिक शिखर श्री कृष्ण ने रस का आस्वादन किया, ऐसे ब्रज भूमि प्रेम की भूमि और वह लीला भूमि जहां पर कृष्ण चंद्र जो कि राधा जी के चरणों में पुष्पांजलि समर्पण करते हैं, और राधा जी क्या करती है जो कि देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेव का सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सर्व मोहिनी परा देवी द्योतमाना परमा सुंदरी कृष्ण क्रीड़ा की बसती नगरी, जिनके सौंदर्य का वर्णन या अंदाजा अनुमान कैसे लगा पाएंगे। हमारे आचार्य लोग स्वामी बलराम उन्होंने वर्णन किया लक्ष्मी जलंग्री कमलस्त रखांचलस्त बिंदुम अपिलार्हति लब्धुम इसे, बोले जगत वरेण्या लक्ष्मी जी सबसे बड़ी सुंदरी, उनसे बढ़कर और कोई सुंदरी नहीं, परंतु ऐसी लक्ष्मी जी जिन राधा जी के चरण कमल के नखों के अग्र भाग में सौंदर्य की जो छटा कणा, उस सौंदर्य छटा कणा के एक कण भी लक्ष्मी जी प्राप्त नहीं कर पाई तो विष्णु हनुमंद जी राधा जी कैसी सुंदरी। कृष्ण स्वयं जिन्हें देखकर मही खुल जाया करते हैं, स्तंभी धुल जाते हैं, अपना सुख खो बैठते हैं, ऐसे जहां लीलाएं होती कृष्ण की जितनी सारी लीलाएं हैं सब राधा जी के कारण, उनकी जितनी भी इच्छा अभिलाषा है सब विष्णु राधा जी पूर्ति करती हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ आराधिका, इसलिए पुराणों में उनको राधिका कही है। कृष्णमयी कृष्ण जी के बाहर भीतर निरंतर कृष्ण में जो खोई हुई है, और सप्त समुद्रवती राधा और अपार अनंत गुणवती राधा जो गंधर्वादित माधवा, जिनके अंग गंध से माधव स्वयं उन्मादित हो जाए, ऐसी समस्त देवियों में समस्त देवताओं में जो सर्वश्रेष्ठ आरती सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति समस्त सौंदर्य की पराकाष्ठा और रस साम्राज्य की नगरी है, इसलिए ऐसी जो कृष्ण नंदिनी राधा जी जो अपनी रसमयी लीलाओं के द्वारा कृष्ण को रसास्वादन कराते हैं, ऐसे जो श्यामा सेन प्रेम की मूर्ति एकात्मक स्वरूप में बन करके गौरांग से हरे हुए हैं, प्रेम स्नेह महाप्रणय राग अनुराग भाव महाभाव की जहां पराकाष्ठा है, ऐसे रस का स्वादन करने वाले रसिक शेखर श्री कृष्ण जो कि स्वयं राधा भाव कांति में गौर हरि के रूप में अवतरित होकर के इस प्रेम का स्वादन किया, विश्व जगत को जगाया बताया कोई सौभाग्यवान जीव हो और कोई सौभाग्यवान साधक हो यदि आश्रय करना हो के चरण कमल का आश्रय करें, जीवन में साधना का लक्ष्य बिंदु उनके भाव के ये कौन सीधा बुढ़ा भी मिल जाए, उनकी जो दासियां हैं प्रिय सहचर्या जो उनकी इंद्रियां और जो उनकी सेवा करती हैं, उनके अनुगत होकर के उनके भाव का एक कारण ही प्राप्त हो जाए जीवन की सर्वश्रेष्ठ अभिलाषा का विषय। इसलिए यह लोग लालसा लेकर के गौरांग चरणे कुलतारु राजम, श्री गौरांग सुंदर के चरण में अनुराग विस्तार करें। इसलिए आचार्यों ने कहा संसार सिंधु तरणे हृदयं यदि स्यात् संकीर्तनामृत रस रमते चंद्र चरणे कुलतानुरागं। संसार सिंधु तरणे, संसार समुद्र से यदि पार होने की इच्छा है और हरिनाम संकीर्तन रस में डूबने की यदि इच्छा अभिलाषा है, कृष्ण प्रेम रस सिंधु में यदि अवगाहन करने का मन है तो एकमात्र गौरांग चंद्र चरणे कुलतारुरागं श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में अनुराग वर्धित हो, उनके चरणों में अनुनति हो, प्रार्थना हो, तब ये भाव प्री संभव, तब ब्रजरस लाभ होगा। इसलिए अंत में ऐसे ब्रजरस रसिकाया पाद पद में कुलतारुरागं आज हम सबके मध्य में विराजमान मंच पर आसीन ब्रजरस रसिक, जो कि इस प्रकार भावों में जो डूबे हुए ऐसे महान पुरुष के आज सान्निध्य प्राप्त हुए हैं, उनके मुखारविंद से अमृतमय पाणी का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह जन्म जन्मांतर का असीम अनंत सौभाग्य का फल स्वरूप ऐसे महान पुरुष की कृपा।
मान माधव महाराज जी आज कुछ हरि कथा परिवेशन करेंगे। शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णाय तद्भक्ताय जनमो तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मम शरणं। सप्रथम मैं अपने परमाराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि बार दंडवती प्रणति पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात त्रिदंडीपादगण ब्रह्मचारीगण उपस्थित सज्जन महोदय मातृवृंद, आज लगभग 5 दिन से यहाँ जम्बू में हरि कथा हो रही है। आप लोग बड़ी श्रद्धा के साथ में श्रवण कर रहे हैं। इस कथा के अतिरिक्त भी सवेरे नगर संकीर्तन होता है, किसी के घर में प्रवचन होता है, दोपहर को प्रवचन होता है, अभी रात में यहाँ पर समाप्त होने के बाद में किसी के घर में प्रवचन होगा। दिन भर हरि कथा में यहाँ पर बीत रहा है। आप लोगों का परम सौभाग्य है जो वृंदावन से सब लोग यहाँ पर पधारे हैं और हरि कथा परिवेशन कर रहे हैं। कल मैं उद्धव जी के संबंध में बतला रहा था, प्रेमातु भक्त के संबंध में, जहाँ कृष्ण को स्वयं जाने की जरूरत है, उद्धव जी प्रतिनिधि के रूप में उद्धव जी को भेजते थे। इसीलिए ब्रज में गोपियों को, नंद बाबा यशोदा मैया को, ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए कृष्ण को जाने की जरूरत थी। और कृष्ण प्रतिज्ञा कर किए भी थे कि मैं कल परसों आऊँगा। इसलिए गोपियाँ ब्रजवासी लोग जीवन धारण कर रहे हैं, उनकी बातों पर विश्वास है, कल परसों जरूर आएंगे। तो कृष्ण ने उद्धव जी को प्रेम की पाठशाला में भेजा। उद्धव वहाँ से प्रेम पढ़ करके आएगा तो उस समय दो हृदय की बातें कर सकूँगा। अपने कंस के सोने के रथ में बैठा करके भेजा। जब वहाँ गए गोपियों ने उनसे प्रश्न किया, उद्धव ये तो बतलाओ कि प्रेम दो प्रकार का होता है, एक निष्कपट प्रेम होता है, निस्वार्थ, और दूसरा स्वार्थ भरा प्रेम होता है। जैसे पहले स्वार्थ जिस प्रेम में है उसको वर्णन कर रही हैं, जैसे जंगल में हिरण रहता है, पशु पक्षी रहते हैं, जब जंगल में आग लग जाती है तो पशु पक्षी उसे छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं, उस जगह में नहीं रहते। भिखारी भिक्षा मांगने के लिए जाता है, राधे राधे इत्यादि बोलता है, जब उसको भिक्षा मिल जाती है तो बुलाने पर भी वो नहीं ठहरेगा, दूसरी जगह चला जाएगा। जैसे विद्यार्थी है, स्कूल कॉलेज में पढ़ता है, पास हो गया, फिर अब मास्टरों से गुरुओं से कोई संबंध नहीं। और जैसे वैश्य है, उसे रुपये की जरूरत है, किसी से उसको मोह लाग लगाव नहीं है, यदि रुपया उसका समाप्त हो गया फिर उसे प्यार नहीं करेंगे। इसी तरह से ये जगत जो है ये स्वार्थ का प्रेम है। कृष्ण के साथ में हमारा स्वार्थ प्रेम तो था नहीं, हमने कभी किसी स्वार्थ के लिए उनसे प्रेम नहीं किया और कृष्ण ने भी हमसे कभी भी स्वार्थ से कोई प्रेम नहीं किया। उद्धव बतला सकते हो ये प्रेम कैसे टूट गया, कैसे टूट गया, कैसे द्वारका में बस गए और 16,000 रानियों के साथ में 108 रानियों के साथ में शादी कर ली, हमें भूल गए, बतला सकता है? उद्धव सिर खुजलाने लगे, उत्तर नहीं आया। इसलिए कॉलेज में प्रेम के कॉलेज में भर्ती नहीं हो सके, केवल ऊपर से देखा, कॉलेज को देखा प्रेम का, उसके प्रिंसिपल को भी देखा, राधा जी को, ललिता विशाखा जी को भी देखा, किंतु ब्रज का कोई भाव उनको नहीं हुआ, इसलिए अंत में लौट करके आना पड़ा। ब्रज के एक धूली कना भिड़ी एक तीर्ण लता गुल में भी नहीं हो सके, इसलिए कॉलेज में तो भर्ती नहीं हुए, किंतु ऊपर से जो देखा द्रवित हो गए और गोपियों से प्रतिज्ञा की कि मैं जब जाऊंगा मथुरा में कृष्ण को जरूर लेकर के आऊंगा। इसके बाद में कॉलेज में भर्ती तो प्रेम कॉलेज में हुई नहीं। शाम को सोने के रथ पर चढ़कर उद्धव जी आए ब्रज में। उद्धव जी सोच रहे थे कृष्ण को छोड़कर मैं कैसे एक मिनट भी रह सकता हूँ, संभव नहीं है। कृष्ण ने बतलाया जी उद्धव ब्रज में मैं एक टुकड़ा रहता हूँ, संपूर्ण रूप में ब्रज में रहता हूँ, ब्रज में जाने पर तुम देखेगा। तो जब उद्धव जी ब्रज में पहुँचे तो उस समय देखा क्या, करोड़ों करोड़ों गायें गौएं चर करके लौट रही हैं, सखा लोग कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, सांड लोग परस्पर लड़ रहे हैं और ब्रज की गोपियां शाम को घृत की दीपक देकर जलाकर कोई दधि मंथन कर रही है, कोई कुछ कर रही है। दधि मंथन कैसे कर रही है, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति। कोई गोपी अपने बच्चे को थपथपा करके सुला रही है तो सो सो नहीं कर रही, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति। कोई पिंजड़े में सुख है, उसको पालन कर रखा है सुख, तो वो क्या उनको पढ़ा रहे हैं, बोलो बोलो, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति। आप लोग भी घर का काम करते हुए क्यों नहीं ऐसा कर सकते, घर में पोत रही हैं, साफ कर रही हैं, रसोई बना रही हैं और उस समय कह सकती हैं गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति। जसोदा जी मानो अपने बच्चे की बाल गोपाल की लीलाओं का स्मरण करके और दधि मंथन करते हुए आंखों से आंसुओं की धारा गिर रही है। गोविंद
रामा
इस तरह से उद्धव जी उद्धव जी ने देखा सचमुच में कृष्ण ने कहा था मथुरा में मैं तो केवल टुकड़े के रूप में थोड़े और परिपूर्ण रूप से मैं ब्रज में रहता वृंदावनम परित्यज्य पादम एक अनुपच्छ वृंदावन को छोड़कर के कृष्ण कहीं नहीं रह सकते चाहे छिप करके रहे चाहे प्रकट रूप में रहे। अभी भी कृष्ण की लीलाएं वहां पर चलती हैं सौभाग्यवान व्यक्ति लोग उसका दर्शन करते हैं इसलिए वृंदावन को छोड़ राधा जी भी वृंदावन को छोड़ करके नहीं जाती उनको कृष्ण का वियोग नहीं होता वो वृंदावनेश्वरी विशुभानंदनी राधिका जी हैं और जिनको वियोग होता है नंदगांव में जो भ्रमर गीत को कहती हैं कभी मान कर रही हैं कभी क्रोध कर रही हैं कभी बड़ी नम्र होकर के कहती हैं वो कौन है
प्रकाश है वियोगिनी
हाँ
राधा जी का प्रकाश वियोगिनी राधा
वो वियोगिनी राधा जी हैं और वृंदावन को छोड़कर के नहीं जाती है किंतु जो कुरुक्षेत्र में कृष्ण से मिलने के लिए गई वो कौन है
संजोगिनी
वो संजोगिनी राधा जी है संजोगिनी राधा जी है। उसी प्रकार से महाप्रभु जी के लीला में भी सब समय जो गुप्त वृंदावन नवदीप धाम में रहते हैं वो विश्वभानंदनी के विभाव से विभावित चैतन्य महाप्रभु और जो जगन्नाथपुरी में रहते हैं वो वियोगिनी हैं और जो राय रामानंद के साथ में गए हैं गोदावरी के तट पर वो राधा भाव से विभावित संजोगिनी राधा जी हैं। बहुत गंभीर विषय है जो निरंतर इन कथाओं को सुनेंगे वे सब समझ सकते हैं। तो उद्धव जी ने देखा कृष्ण तो यहीं पर है। तत्पश्चात शाम हो गई थी रथ को खड़ा कर दिया और नंद बाबा के घर में खबर दिया नंद महल में उद्धव जी का भाई और सखा कृष्ण का आया हुआ है। सुरखा नंद बाबा जी घर से निकल करके इनको घर में ले गए बड़ा आदर किया कुछ खिलाना था किंतु रसोई तो बनती नहीं कृष्ण तो है नहीं बर्तन जो हैं बिना माजे हुए औंधे पड़े हैं और रसोई के लिए ये चूल्हा है आजकल तो चूल्हे नहीं होते हैं पहले चूल्हे होते थे चूल्हे पर मकड़ों ने जाला बन दिया है इसलिए रसोई नहीं बनी सभी विरह में तप्त हैं कौन बनाए किसके लिए जो सोदा जी उठ करके बैठ नहीं सकती सब समय रोते रोते आंखें अंधी हो गई हैं। उस समय नंद बाबा ने किसी को भेज करके ब्राह्मण के घर से खीर मंगाया वो भी खीर बिना
चीनी का
खीर खिलाया इसके बाद उन्हें आदर जत्न करके जब प्रसन्न हो गए तो पूछना चाहते हैं जैक हमारा कृष्ण कैसे है कुशल से है जो ही बोलना चाहते हैं गला भर जाता है पूछ नहीं सकते बड़ी मुश्किल से पूछा हमारा भैया वासुदेव ठीक है भगवान की कृपा से अपने पापों से वो मारा गया कंस मारा गया अब तो कुशल है
जब ही कृष्ण बोलना चाहते हैं त्यों ही गला भर जाता है, अंत में किसी प्रकार से बोल। ओहो देखो उद्धव, मैं कृष्ण को भूलने के लिए मैं यमुना के किनारे जाता, वहां पर सब लीलाएं की और कृष्ण का स्मरण हो आता है। गोवर्धन जाता हूं पर्वत पर, किंतु ऐसा कोई स्थान है जहां पर लीला नहीं किया। ऐसे उनकी लीलाओं का वर्णन करते 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 एकदम रोने लग गए। उद्धव जी कहते हैं कि इसको क्या संतना दूं, कृष्ण ने कहा है जे संतना देना, यदि कहूं जे नंद बाबा और रोइए तो तेज संतना होगी नहीं। कृष्ण के लिए यदि एक आंख में एक बूंद भी पानी आ जाए, जीवन सार्थक है मनुष्य का। किसी प्रकार से कृष्ण का वियोग हृदय में आए, एक बूंद भी आंसू आंखों में आ जाए, समझो जो उस मनुष्य का जीवन बड़ा भारी सौभाग्यवान। और ये तो फूट फूट करके रो रहे हैं, उनको अपना बेटा मान करके रो रहे हैं, तो क्या कहूं ये नंद बड़े सौभाग्यवान हो, ये तो सांत्वना होगी नहीं। और यदि कहूं मत रोइए तो शास्त्र कहते हैं मना करते हैं, ऐसा मत कहो। और यदि कहूं जो रो तो इतना सांत्वना देना हुआ नहीं। आखिर मैं क्या कहूं, जब कुछ समझ में नहीं आया तो इतना ही बोले, नंद बाबा और जसोदा मैया आप लोग परम सौभाग्यवान हैं, जो पर ब्रह्म समस्त रच विश्व की सृष्टि करने वालों के आप भी सृष्टिकारी है, जो आदि अनादि है स्वयं, उसको पुत्र मान करके रो रहे हैं, आप परम सौभाग्यवान हैं। नंद बाबा चुप हो गए और बोले, उद्धव मैंने सोचा था कि तुम अब बुद्धिमान हो गए हो, कृष्ण के साथ में अनेक दिन तक रहे हो, उसके सखा भी हो, किंतु तुम्हारे अकल का दांत अभी भी नहीं गया गिरा। दूध का कोई दांत होता है अभी तक नहीं गिरा, अर्थात अकल तुमको नहीं आई। उद्धव जैसे लोग को नंद बाबा कह रहे हैं जो तुमको अकल नहीं है, किसको सौभाग्यवान कहना चाहिए किसको सौभाग्यवान नहीं कहना चाहिए ये भी तुम नहीं जानते। तुम कह रहे हो कृष्ण आपका बेटा है, ऐसे बेटा को कृष्ण जो स्वयं भगवान है उसको बेटा के रूप में हमने पाया और खो दिया और अभी तक जीवित मैं हूं, उसको तुम सौभाग्यवान कहते हो। उद्धव जी ने कहा जी मैंने ठीक नहीं कहा, ये ठीक नहीं किया। नंद बाबा बोले जे देखो जगत में एक ही बाप था और वो था दशरथ महाराज, पुत्र के वियोग में हाराम हाराम और हाराम कहते हुए प्राण छोड़, मेरा पद्य जैसा हृदय प्राण नहीं निकल रहा, सुन राम जी कृष्ण मेरा बेटा है, मैं तो उसका बेटा कभी नहीं माना, बेटा ही माना, भगवान नहीं माना उसे कभी, उसको डांटा डपटा सब कुछ किया, उसको शासन किया, कभी अपनी जूती उसे कहता थे जूती लाना सिर पर लेकर के आता, और कहते 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 मूर्छित हो गए। जसोदा मैया तो कुछ बोल ही नहीं सके, सवेरा हो गया, उद्धव जी स्नान इत्यादि करने के लिए कृष्ण कुंड नंदगांव में है, वहां पर गए स्नान किया, हठात देखा क्या, देखा जब वहां पर कोटि कोटि कदंब के वृक्ष हैं। जब से कृष्ण बाहर में गए हैं मथुरा तब से उन्होंने न कुछ खाया न कुछ किया, न कपड़े बदले न कुछ, उसी वन में हैं, धीरा में तप्त हैं। उद्धव जी ने उधर में देखा, देखने के बाद में क्या हुआ, अभी एक कीर्तन हो इसके बाद मन रो लागे।
जय जय।